മോക്ഷമാർഗസ്യ നീതാരം ഭീതാരം കർമ്മഭൂഭൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയേ. तत्वार्थ सूत्र का चतुर्थ अध्याय. सूत्र क्रमांक 6. अथ तेषु निकायेषु किमेकैक इंद्र उतान्य प्रतिनियमः कश्चिदस्तीत्यत आह. अब उन चार निकायों में क्या एक एक इंद्र होते हैं अथवा कोई विशेष नियम है इंद्रों का? तो आचार्य कहते हैं पूर्वयोर द्विंद्राः. पूर्वयोः पहले के जो दो हैं, पूर्वयोः सप्तमी का द्विवचन है. पहले के जो दो निकाय हैं, कौन से दो निकाय हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चार निकाय हैं. तो पहले के दो कौन से होंगे? भवनवासी और व्यंतर. तो इन दो निकायों में जितने भी भेद हैं, क्योंकि भेद पहले बतला चुके हैं ना, अभी नाम नहीं बताए लेकिन इतना कहा दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः. तो ये भेद बतलाए थे, संख्या बताई थी. तो अभी कह रहे हैं कि जैसे भवनवासी में 10 भेद हैं और व्यंतर के 8 भेद हैं, तो इनमें द्विंद्राः दो दो इंद्र होंगे. कैसे दो दो इंद्र होंगे? तो आचार्य बतलाते हैं भवनवासिषु. अब ये इंद्रों के नाम बता रहे. भवनवासियों में तावद असुर कुमाराणाम, जो असुर कुमार देव होते हैं भवनवासियों के अंदर, 10 भेद हैं भवनवासियों के. तो पहला भेद असुर कुमारों का, उसकी उस भेद में दो इंद्र हैं, चमर और वैरोचन. यानी एक का नाम चमरेंद्र है, दूसरे का नाम वैरोचनेन्द्र है. नागकुमाराणाम धरणो भूतानंदश. नागकुमार में भी दो इंद्र हैं, एक धरणेन्द्र है जिनका नाम पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से सबसे ज्यादा विख्यात है, और दूसरे भूतानंद इंद्र है. भूतानंद दूसरे इंद्र का नाम है. विद्युत कुमाराणाम, विद्युत कुमार देवों के हरि सिंह हरिकांतश, हरि सिंह और हरिकांत, ऐसे दो इंद्र हैं. सुपर्ण कुमाराणाम, फिर जो सुपर्ण कुमार होते हैं, ये सब भवनवासियों के 10 भेदों के अंतर्गत आने वाले नाम हैं. तो सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव वेणुधारी च, एक का नाम वेणुदेव है इंद्र का, दूसरे इंद्र का नाम वेणुधारी है. अग्नि कुमाराणाम अग्निशिख अग्निमाणवश्च, दो इंद्र हैं अग्निशिख और अग्निमाणव. वात कुमाराणाम वैलंब प्रभंजनश्च, वात कुमारों के वैलंब और प्रभंजन, ऐसे दो इंद्र हैं. स्तनित कुमाराणाम सुघोषो महाघोषश्च, स्तनित कुमार देवों के इंद्र सुघोष और महाघोष हैं. उदधि कुमाराणाम जलकांतो जल प्रभश्च, जलकांत और जल प्रभ. द्वीप कुमाराणाम पूर्णो विशिष्टश्च, द्वीप कुमारों के इंद्र पूर्ण और विशिष्ट. दिक् कुमाराणाम दिक् कुमार देवों के इंद्र अमित गति अमित वाहनश, अमित गति और अमित वाहन, अमित गति अमित वाहन अश्चीति। तो ये 10 भवनवासियों के 20 इंद्र हो गए, असुर कुमारों के चमर वैरोचन, नाग कुमारों के धरण और भूतानंद, विद्युत कुमारों के हरिसिंह और हरिकांत, सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव वेणुधारी, अग्नि कुमारों के अग्निशिख अग्निमाणव, वात कुमारों के वैलंब और प्रभंजन, स्तनित कुमारों के सुघोष महाघोष, उदधि कुमारों के जलकांत जलप्रभ, द्वीप कुमारों के पूर्ण और विशिष्ट, दिक् कुमारों के अमित गति और अमित वाहन। ये नाम हमेशा रहते हैं, फिर जीव बदलते रहते हैं। जैसे सौधर्मेंद्र अपने आयु पूर्ण करके नीचे मनुष्य बनकर मोक्ष चले जाते हैं, वहां पर दूसरे सौधर्मेंद्र बन जाते हैं। जैसे अनादिकाल से सौधर्मेंद्र बदलते ही रहे, इतनी अवधि निकलने के बाद बदल जाते, ये सभी बदल जाते हैं। व्यंतरेश्व भी किन्नराणाम द्वाविंद्रो, व्यंतरों में भी किन्नरों के दो इंद्र हैं, किन्नर है किम पुरुषश्च, किन्नर और किम पुरुष। किम पुरुषाणाम, किम पुरुषों के दो इंद्र सत्पुरुष महापुरुषश्चेति, सत्पुरुषो महापुरुषश्चेति, सत्पुरुष और महापुरुष। महोरगाणाम अतिकायो महाकायश्च, महोरग के अतिकाय और महाकाय है। गंधर्वाणाम गीत रतिर गीत यशाश्च, गंधर्वों के इंद्र को नाम गीत रति और गीत यश गीत यशा। यक्षाणाम यक्ष देवों के भी दो इंद्र हैं, पूर्णभद्रो माणिभद्रश्च, पूर्णभद्र और माणिभद्र। राक्षसानाम राक्षस देवों के इंद्र भीमो महाभीमश्च, भीम और महाभीम। भूतानाम प्रतिरूपो प्रतिरूपश्च, प्रतिरूप और अप्रतिरूप भूतों के इंद्रों के नाम है। पिशाचा नाम कालो महाकालश्च, पिशाच देवों के इंद्र का नाम काल और महाकाल है। अथैषान देवानाम सुखम कीदृशमित्युक्ते सुख सुखावबोधनार्थमाह, अब इन देवों का सुख किस तरह का होता है ऐसा पूछने पर सुख की जानकारी देने के लिए आचार्य कहते हैं, काय प्रविचारा ऐशानाथ। इति भवनवास से आदय ऐशानांता, ये जो भवनवासी को आदि लेकर ऐशान पर्यंत जो देव होते हैं वो जो इंद्रिय सुख है काम सुख है वो संक्लिष्ट कर्मत्वात्, वेद कर्म से उत्पन्न होने वाला जो संक्लेश भाव है उसके कारण मनुष्यवत, मनुष्यों के समान स्त्री विषय सुखम अनुभवंती इत्यर्थ है। स्त्री पुरुष जैसे सुख का अनुभव करते हैं, ये कौन से भवनवासी को आदि लेकर व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देवों में आ ऐशानाथ, पहले और दूसरे स्वर्ग तक के देव मनुष्यों के समान सुखोपभोग करते हैं। अवधिक ग्रहणाद इतरेषां सुख विभागे निर्ज्ञाते तत्प्रतिपादनार्थमाह, अब आपने अवधि बता दी, ईशान स्वर्ग तक के देव ऐसा करते हैं तो फिर और आगे वाले देव कैसा करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई तो उसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, बाकी ऊपर के जितने देव हैं वे विभिन्न भिन्न प्रकार से प्रविचार करते हैं, स्पर्श प्रविचार रूप प्रविचार शब्द प्रविचार और मन प्रविचार, चार प्रकार के प्रविचार ऊपर के देवों में होते हैं। अब उसको बता रहे हैं आर्षा विरोधेन। अब आर्ष का अर्थ होता है आगम, आगम से विरोध न पड़े उस तरीके से आचार्य महाराज उसको स्पष्ट कर रहे हैं। सानित कुमार माहेंद्र योर देवा देवांगना स्पर्श मात्रा देव पराम प्रीति उपलभन्ते। सानत कुमार और महेंद्र जो तीसरा और चौथा स्वर्ग है, वहां के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से ही प्रविचार को प्राप्त हो लेते हैं, पराम प्रीति उपलभन्ते, उत्कृष्ट प्रीति को उपलब्ध कर लेते हैं। तथा देवियों भी, वैसे ही वहां की देवियां भी होती हैं, छूने मात्र से उनको तृप्ति हो जाती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठेशु। इसके बाद चार स्वर्ग और लेना है, ब्रह्म स्वर्ग, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, पांचवें और छठे स्वर्गों के नाम है, लांतव और कापिष्ठ सातवें और आठवें स्वर्ग के नाम है। इन चार स्वर्गों के देव देवा देवांग दिव्यांगना नाम, जो उनकी दिव्य देवियां हैं, उनके श्रृंगाराकार विलास चतुर मनोज्ञ वेश रूपावलोकन मात्रादेव परम सुखम आपनुवंती। यानी उनके श्रृंगार को देखकर, उनके आकार को देखकर, उनके विलास को देखकर, उनके चतुर और मनोज्ञ वेश को देखकर, उनके रूप अर्थात सुंदरता को देखकर ही इतने मात्र से उनको परम सुख प्राप्त हो जाता है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेषु देवा देववनितानां मधुर संगीत मृदु हसित ललित कथित भूषण रवश्रवण मात्रा देव पराम प्रीतिमास्कंदन्ति। इसके बाद दसवां स्वर्ग, नौवां स्वर्ग शुक्र है, दसवां महाशुक्र है, शतार ग्यारहवां है, सहस्रार बारहवां है, तो नौ दस ग्यारह बारह, इन चार स्वर्गों में देवा जो देव हैं वे देव वनिता नाम अपनी देवियों के मधुर संगीत, मृदु हसित कोमल हास्य, फिर ललित कथित और नए नए कथनों से, और भूषण रव उनके आभूषणों की झिनझिन ध्वनि से, इनके श्रवण मात्र से ही उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद अंत के जो चार कल्प हैं, आनत प्राण तारणाच्युत कल्पेशु, तेरहवा चौदहवा पंद्रहवा और सोलहवा जो स्वर्ग है, वहां में देवा जो देव हैं वे स्वांगना मन संकल्प मात्रा देव परम सुखम आपनुवंती। वो अपनी देवी के संकल्प मात्र से ही मन में उस सुख को, परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह ये सब जो है उत्तर उत्तर अल्प प्रवृत्ति में अधिक सुख प्राप्त करने वाली परिणति होती है देवों में। निचले जो देव हैं तीन निकाय वाले और फिर पहले दूसरे स्वर्ग के, उनकी स्थिति मनुष्यों के समान है। यानी उनके जीवन में जो पत्नी सुख है वो बिल्कुल मनुष्यवत है, लेकिन उसके ऊपर के जो दो स्वर्ग हैं वहां पर सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में स्पर्श से वो सुख प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो आने वाले चार स्वर्ग हैं, क्योंकि ये अब बारह स्वर्ग बचे हैं, तो उसके बाद के जो चार स्वर्ग ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ, वहां पर रूप यानी उनके सब आंखों से देखने से उनको सब काम तृप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद जो आगामी चार स्वर्ग हैं, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार, नौ दस ग्यारह बारह, वहां पर केवल ध्वनि मात्र से उनको वो तृप्ति होती है। और अंत के जो चार स्वर्ग हैं वहां केवल मानसिक संकल्प मात्र से उनको वैसी तृप्ति हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि नीचे नीचे कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला जो संक्लेश है वो अधिक है और ऊपर ऊपर कम है, और लेश्या भी ऊपर ऊपर की शुभ है। तो शुभ लेश्याओं में अपन देखो, लेश्याओं का वर्णन कभी पढ़ करके देखना और कभी अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर कौन सी लेश्या है। ये बहुत सुंदर प्रयोग है, देखने योग्य है। लेश्याओं का वर्णन पढ़कर फिर अपने अंदर देखना कि कौन सी लेश्या चलती है। तो अपने क्या है कि देवों में वही लेश्या रहती है, हमेशा एक ही लेश्या रहती है, और अपनी लेश्या जो है वो कहीं से कहीं पहुंचती है, वो नरकों के नीचे वाली लेश्या तक चली जाती है और ऊपर स्वर्गों तक की लेश्या चली जाती है अपने मनुष्यों की। और जैसी संगति और जैसा वातावरण और जैसे कर्म का उदय आ जाए, ये कर्म भूमि है तो कर्म भूमि में एकदम ऊंचे ऊंचे भाव भी हो जाते और एकदम नीचे नीचे चले जाते, तो फिर ये देखने योग्य है लेश्याओं का। फिर प्रश्न आता है कि ये तो मन तक के तो आप ले गए, फिर उसके आगे, यानी 16 स्वर्ग की बात पूरी हो गई, उसके ऊपर वहां पर भी तो देव लोग रहते हैं ना, 16वें स्वर्ग के ऊपर क्या है? कल्पातीत विमान है कौन से? ग्रैवेयक, अनुदेश और अनुत्तर। तो वहां क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं परे प्रविचारा, वहां अप्रविचार है। परग्रहणम इतरे मित्राशेष संग्रहार्थम, बाकी जितने भी विमान शेष रह गए उन सबको ग्रहण करना। अप्रविचार ग्रहणम परम सुख प्रतिपत्त्यर्थम, अप्रविचार जो सुख है वहां का, वो ये सूचित करता है कि उनका सुख नीचे वालों के सुख से परम है, उत्कृष्ट है। क्यों? प्रविचारो ही वेदना प्रतिकार है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो इंद्रिय सुख है वो वेदना का प्रतिकार है। मन में बेचैनी हो रही है तो फिर आप सुख भोग करके उसका शमन कर रहे हैं, तो वेदना का प्रतिकार है, इसलिए वो सुख नहीं है वास्तव में। तदभावे तेषाम परम सुखम अनावरतम अनवरतम भवति, और उसके अभाव में, प्रविचार के अभाव में उनको परम सुख निरंतर होता है। यहां तो जब वो वैसा करते हैं तब होता है, उस प्रकार की प्रवृत्ति होती है उनकी तब उनको वैसा सुख होता है, लेकिन वहां निरंतर उसका अभाव रहता है तो निरंतर उनको सुख रहता है। और खास बात तो ये है कि देवांगनाएं 16वें स्वर्ग तक ही होती है, उसके ऊपर नहीं होती है। उसके ऊपर केवल अहमिंद्र होते हैं, और ये 10 भेद भी अभी देखिए आगे बताते हैं। वहां पर नहीं होते। अब भवनवासियों के 10 भेद कौन से हैं वो बता रहे हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुप्रणाग निवातस्तनितो दधि द्वीप कुमारा, भवनवासी असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, जो सूत्र में क्रम है वैसा हम बता रहे हैं, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ऐसे 10 प्रकार के भवनवासी हैं। पहले भी अग्नि कुमार पहले आया था, वात कुमार बाद में आया था। तो असुर कुमार तो खैर असुर कुमार ही है, नाग कुमार को नाग देवता कहते हैं, विद्युत कुमार भी विद्युत कुमार है, सुपर्ण कुमार, सुपर्ण कुमार को गरुड़ कुमार भी कहते हैं, गरुड़ देव भी कहते हैं। तो उनके सुंदर पंख होते हैं सुपर्ण, ऐसा चित्रण आता है कहीं कहीं पर, सुपर्ण कुमार। फिर अग्नि कुमार अग्नि देवता कहलाते हैं, वात कुमार वायुदेव कहलाते हैं, स्तनित कुमार स्तनितम मेघ गर्जितम, मेघ कुमार भी कहते हैं इनको, मेघ गर्जना को स्तनित कहा जाता है। उदति कुमार जल देवता है, वरुण देवता है, जो समुद्र देवता है, उदधिकार समुद्र है, फिर द्वीप कुमार, फिर दिक कुमार, दिक कुमार यानी दिशा देव, दिशा देवता, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा इत्यादि। द्वीप कुमार, द्वीप कुमार, कुमार सबके साथ लगाना है। हाँ, तो दिक कुमार यहाँ द्वीप यानी पानी से घिरा हुआ मिट्टी जमीन का स्थान, उसको द्वीप आइलैंड बोलते हैं, और दिक यानी दिशा है। इनको कुमार क्यों कहते हैं बता रहे, बोले सर्वेषां देवानां अवस्थित वयः स्वभावत्वेपि, सब देवों की आयु और स्वभाव स्थिर होता है, लेकिन तब भी वेशभूषायुध यान वाहन क्रीडनादि कुमार अवदेशाम आभासंत इति भवनवासिषु कुमार व्यपदेश। इन भवनवासियों में खासियत ये रहती है, विशेषता ये रहती है कि इनकी वेशभूषा, इनके आयुध यानी अस्त्र शस्त्र, इनके यान यानी विमान और वाहन यानी ये जो जानवर बन करके जो अभियोग्य देव इनमें वाहन का काम करते हैं वे, और क्रीडन आदि जो इनकी क्रीड़ा आदि होती है वे कुमारवत कुमारों के समान होती है। जैसे कुमार वय में लड़के लोग अलग अलग प्रकार से खेल करते हैं ना, बस उसके समान इनकी स्थिति रहने के कारण इनको यही कहते हैं, कुमार कहते हैं। इति भवनवासिषु कुमार व्यपदेशु रूढ़ है, इसलिए उसमें रूढ़ है कुमार शब्द। अब एक खास बात बताते हैं कि क्वतेषां भवनानि इति चेत, भवनवासी कह रहे हो आप, तो भवनवासी का अर्थ भवन में निवास करने वाले, भवने वसंती तेवं शीला भवनवासी ना, व्युत्पत्ति ऐसी होती है संस्कृत व्याकरण में कि भवन में वास करते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं। तो फिर ये तो बताइए कि कौन से भवन है, कहाँ के भवन है। तो आचार्य कहते हैं रत्न प्रभाया पंक बहुल भागे असुर कुमाराणाम भवनानी, असुर कुमारों के भवन रत्न प्रभा पृथ्वी के पंक बहुल भाग में होते हैं। फिर खर पृथ्वी भागे, खर पृथ्वी वाले भाग में, खर पृथ्वी थोड़ी ऊपर होती है, पंक पृथ्वी और नीचे होती है, पंक बहुल पृथ्वी जो होती है थोड़ी और नीचे होती है। ये खर पृथ्वी जो है वहां पर ऊपर अध्यक्ष ऊपर और नीचे दोनों तरफ एकैक योजन सहस्रम वर्जयित्वा, ऊपर के 1,000 योजन छोड़ दो, नीचे की 1,000 योजन छोड़ दो, तो खर पृथ्वी के बीच वाला जो भाग है वहां पर शेष नवानाम कुमाराणाम आवास, बाकी नौ जो भवनवासियों में कुमार देव हैं उनके निवास है, तो नाग कुमारों के निवास भी वहीं पर है खर पृथ्वी में, केवल असुर कुमारों के निवास पंक बहुल भाग में है। खर पंक और अब बहुल ऐसे तीन भाग है चित्रा पृथ्वी के। तो ये जो चित्रा पृथ्वी है, इस चित्रा पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है वो खर भाग है, लेकिन उसमें 1,000 योजन और नीचे जाना है, तब वहां जाकर के ये भवन होते हैं इनके भवनवासियों के। और पंक भाग में असुर कुमारों के भवन होते हैं, और अब बहुल भाग में नरक होते हैं। प्रथम पृथ्वी जो है उसके नरक वहां पर होते हैं अब बहुल भाग में, मतलब ये समझ लो कि प्रथम पृथ्वी का ही ये बाहर वाला हिस्सा है जहां पर अपन लोग घूम फिर रहे हैं, अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। क्या हाँ, तो नहीं वैसा नहीं, वो ये तो अपन ऐसे देख रहे हैं वर्टिकल नीचे वाला, यहाँ नॉर्थ साउथ वाला ऊपर नीचे का नहीं देख रहे, यहाँ से फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस अर्थ दिस इज बीइंग सेड। तो ऐसा अंदर 1,000 योजन जाओ उसके बाद ये भवन चालू हो जाएंगे भवनवासियों के, 9 प्रकार के भवनवासियों के भवन यहाँ नीचे मिलेंगे। असुर कुमार के बाद के जितने भवनवासी हैं उन सब के भवन 1,000 योजन नीचे हैं, पर कहाँ है वो एक अलग विषय है। एकदम सीधे जहां अपन है वहां मनुष्य लोक के सीधे नीचे हो ऐसा भी नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्र छोड़ करके फिर वहां से। नीचे के भी असंख्यात हजार, ये 1000 योजन छोड़ करके वहां पर ये मिलते हैं। अब द्वितीय निकायस्य, अब दूसरा जो निकाय है व्यंतर, सामान्य विशेष संज्ञावधारणार्थमाह, उनकी सामान्य और उनकी विशेष संज्ञा का निश्चय करने के लिए सूत्र कहते हैं व्यंतराह। सामान्य संज्ञा व्यंतर है, सब व्यंतर है आठों, लेकिन विशेष संज्ञा कौन सी है? किन्नर व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, ये आठ भेद हो गए। विविध देशांतराणी येषां निवासास्ते व्यंतराह, विविध क्षेत्रों के अंतरों में जिनके निवास है। तो वी विविध का वी ले लिया और अंतर ले लिया, तो वी में अंतर की संधि करो क्या बनता है? व्यंतर बनता है, इको यणची अथवा एवरणो यमसवरणी नच परोलोप्य, तो ये व्यंतर बन गया। जैसे इत्यादि में इति और आदि, तो ई के बाद जब कोई स्वर आता है तो उस ई का ई बन जाता है, तो इति का जो ई था वो ई बन गया इत्य, और उसमें आदि की संधि हो गई तो इत्यादि बन गया। वैसे ही वी में अंतर की संधि कर ली तो व्यंतर बन गया। विविध अंतरालों में जो निवास करते हैं वो व्यंतर कहलाते हैं। इत्तन्वर था, ये बिल्कुल सही नाम है उनका। सामान्य संज्ञा, ये सामान्य संज्ञा उनकी, यम अष्टानाम विकल्पानाम, आठों भेदों की सामान्य संज्ञा है। तेषाम व्यंतराणाम अष्टो विकल्पः, उन व्यंतरों के आठ विकल्प कौन से हैं? किन्नर आदयो वेदितव्यः, किन्नर आदिक है। नाम कर्म उदय विशेषापादिता, नाम कर्म के उदय के भेद से प्राप्त ये आठ विकल्प हैं। किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व, ये चार, फिर यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। राक्षस भूत और पिशाच के नाम बड़े बदनाम है इस कली काल में यहाँ पर, जबकि ये वास्तव में बहुत सुंदर देव होते हैं। फिर उपद्रवी भी होते हैं कुछ, जैसे उनके परिणाम हो जाए जिस काल में, तो वो सब संभव है। क्व पुनस्तेषाम आवास इति चेद उच्यते, अपने भवनवासियों के तो आपने बता दिए कहाँ कहाँ आवास, इनके कहाँ पर आवास है ये बताइए। तो आचार्य कहते हैं अस्मात् जम्बूद्वीपात, इस जम्बूद्वीप से असंख्येयान द्वीप समुद्रान अतीत्य, असंख्येय द्वीप समुद्र को पार कर लो। अभी बता रहे हैं एड्रेस, बता रहे हैं उनका व्यंतरों का कहाँ पर है। बोले असंख्यात द्वीप समुद्र पार कर लो, तो उपरिष्टे खर पृथ्वी भागे, ऊपर जो खर पृथ्वी का भाग है वहां पर सप्तानाम व्यंतराणाम आवास, सात शुरू वाले व्यंतरों के आवास है। शुरू वाले नहीं, हाँ, सात व्यंतरों के आवास है। एक का आवास पंक बहुल भागे, नीचे जहां पर असुरों का आवास है वहीं पर एक इनका भी है। राक्षसानाम पंक बहुल भागे, व्यंतरों में से जो राक्षस जाति के व्यंतर हैं उनका आवास वहां पर है पंख बहुल भाग में, और वहां भी सर्वत्र, तो पूरा एक राजू तक नीचे जो पहली पृथ्वी है, तो वहां पहली पृथ्वी के जो नरक हैं वो तो रहने ही है, वो अब बहुल भाग है। खर पंख और अब बहुल, ऐसे तीन भाग है चित्रा पृथ्वी के। तो याद रहेगा ये, यहाँ पर व्यंतरों के लिए नियम बताया कि असंख्यात जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्र पार करने के बाद जो चित्रा पृथ्वी है वहां पर उपरिष्टे खर पृथ्वी भागे, ऊपर वाले खर पृथ्वी भाग में सात व्यंतरों के आवास है। और सात कौन से हैं तो ये समझ में आ जाएगा जब आठवें की स्थिति बताएंगे। तो जो राक्षस जाति के व्यंतर है वो पंख बहुल भाग में, तो इससे स्पष्ट है कि किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष भूत और पिशाच, इन सातों के आवास खर भाग में है। तृतीयस्य निकायस्य सामान्य विशेष संज्ञा संकीर्तनार्थ माह। तीसरा जो निकाय है देवों का, उसके सामान्य और विशेष नामकरण को बताते हुए आचार्य कहते हैं, ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण कतारकाश्च। ज्योतिष्क देव होते हैं तीसरे निकाय वाले, उनमें सूर्य और चंद्र इनको अलग लिखा है, क्योंकि ये प्रतींद्र और इंद्र है। सूर्य प्रतींद्र है और चंद्र इंद्र है। भले तेज सूर्य का अधिक हो, लेकिन इंद्र पद जो है वो चंद्र को प्राप्त है। और फिर बाकी तीन जो है, पांच भेद है ज्योतिष के। ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्य, ग्रह भी हैं नक्षत्र भी हैं, और प्रकीर्णक का अर्थ होता है बिखरे हुए जो तारक हैं, तारे तारागण वो भी हैं। ये सब ज्योतिष हैं। ये 790 योजन ऊपर, धरती से 790 योजन ऊपर से प्रारंभ होते हैं। तारकाश चरंती, 790 योजन ऊपर तारक हैं। ततो दश योजनान्युत्पत्य, फिर 10 योजन और ऊपर देखें तो सूर्याश चरंती, सूर्य होते हैं। ततो शीत योजनान्युत्पत्य चंद्रमसु भ्रमंती, फिर उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। स्टार्स। फिर ततश्चत्वारि योजनान्युत्पत्य नक्षत्राणि, फिर चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र हैं। ततश्चत्वारि योजनान्युत्पत्य बुधाः, और नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध ग्रह हैं। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य शुक्राः, उसके 3 योजन ऊपर शुक्र ग्रह हैं। बहुत सारे हैं ये। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य बृहस्पतेः, उनसे 3 योजन ऊपर बृहस्पति हैं। ततस्त्री, उससे 3 योजन ऊपर अंगारक मंगल है। ततस्त्री योजनान्युत्पत्ति, उससे 3 योजन ऊपर शनैश्चराश्चरंती, शनैश्चर हैं। यहाँ पर इंसान लोग उनको शनिचर शनिचर बोलते हैं, शनैश्चर नाम है। स एष ज्योतिर्गण गोचरो नभोवकाशो दशाधिक योजन शत बहल तिर्यगसंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाणो घनोदधि पर्यंत। अब ये जो ज्योतिष मंडल है, ये क्या कह रहे हैं, दशाधिक योजन शत बहल, 110 योजन की मोटाई में ये सारे ज्योतिर्गण आ जाते हैं। उसके ऊपर कुछ नहीं है, तारा वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई ज्योतिर्गण नहीं, और नीचे नहीं है। तो ये ऐसी एक पूरी पट्टी है ज्योतिर्गणों की, और ये पूरे मध्यलोक में फैले हुए हैं। कहाँ तक, तो बोले वो स्वयंभू रमण पर्यंत फैली हुई है, और वहाँ भी वात वलय तक जा रही है। पूरे लोक को घेरा हुआ वात वलय है ना, 20-20 हजार योजन का अपन ने पढ़ा था इसके प्रथम सूत्र में, तीसरे अध्याय के। तो वो वात वलय तक, कौन से वात वलय तक जाते हैं, तो घनो दधि वात वलय तक जाते हैं। घन वात वलय, घनो दधि वात वलय और तनु वात वलय, ऐसे 3 वात वलय हैं। तो दूसरे वात वलय तक के ये सब ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह सब ज्योतिर्गण पाए जाते हैं। और फिर खास बात बतलाते हैं, ज्योतिष का नाम गति विशेष प्रतिपत्यर्थम आह। ज्योतिष के देवों की गति विशेष की जानकारी देने के लिए आचार्य कहते हैं, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नृलोके। नृलोक का अर्थ होता है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में नित्य गति है मेरु प्रदक्षिणा, ये नित्य गतिमान रहने वाले होते हैं ये ज्योतिर्गण। और गति कैसी होती है उनकी, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा रूप उनकी गति होती है। मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहते हैं। मेरु पर्वत से 1121 योजन तक के कोई ज्योतिर्गण नहीं मिलेंगे। तो उतने फासले पर फिर ज्योतिर्गण प्रारंभ हो जाते हैं, और वहां तक घनोदधि वात वलय तक चलते हैं, मध्यलोक के आखिरी तक, अंत तक। अभी आज साइंटिस्ट लोग एकमत नहीं है एरिक डूबे के अगर आप खोज देखेंगे तो वो कुछ और कह रहे हैं और नासा कुछ और कहता है, तो दोनों में डिफरेंस है। एरिक डूबे ने 200 प्रूफ्स दिए अर्थ इज फ्लैट, 200 प्रूफ्स दिए। तो यहां जो लिखा है उसको अपन पढ़ रहे हैं अभी। फिर क्या है कि जब विशेष ज्ञान हो तब उसके बारे में निर्णय कर सकते हैं, और अल्टीमेटली तो सब हो ही जाएगा। और फिर प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन का कहना था कि इसमें कुछ चीजें सांकेतिक होती है, तो उसको डिकोड करने से अपने को एक्यूरेट आ जाएंगे, पूरे जो मानदंड होते हैं सब एक्यूरेट आ जाएंगे, बिल्कुल यथावत आ जाएंगे। जैसे उन्होंने किया था कि वहां पर तिलोय पंडित्य में योजनों में जो वर्णन आ रहा है वो यहाँ साइंस के वहां पर डिग्रीज में आ रहा है, तो वो उन्होंने जो कैलकुलेशंस निकाले थे वो हमें दिखाए थे उन्होंने, तो उन्होंने ये बताया था कि जो मेन फिगर है वो तो दोनों में बिल्कुल सेम आ रहा है, और डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स तक भी सेम आ रहा है, थर्ड डिजिट में डिफरेंस आ रहा है शास्त्रों में और फिर वैज्ञानिकों में। तो इसका मतलब ये है कि अंतर नहीं है, वो समझने में अंतर हो रहा है, वास्तव में अंतर नहीं है। तो ये मेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, वो प्रदक्षिणा लगाते हैं, नित्य गतिमान रहते हैं, और मनुष्य लोक की ये स्थिति है। मनुष्योत्तर पर्वत के आगे वाले जितने भी ज्योतिष ज्योतिर्गण है, सूर्य चंद्रमा आदि, वो सब स्थिर है, अचल है, यहां के चलायमान है। और तिलोय पंडित्य में ये भी बताया कि यहां पर जो ध्रुव तारे हैं वो ध्रुव तारे वो स्थिर है, ध्रुव तारे चलायमान नहीं है, अचल है, उनकी संख्या 50 से भी ऊपर है, क्योंकि ये जो ढाई द्वीप है बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। अब प्रश्न आता है कि ये ज्योतिष विमान अपने आप चलते कैसे हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो आचार्य उत्तर देते हैं, गति रत अभियोग्य देव प्रेरित गति परिणामात कर्म विपाकस्य वैचित्र्यात तेषां गति मुखी नैव कर्म विपच्यते इति। जो अभियोग्य जाति के देव होते हैं वो ज्योतिष के देवों में भी होते हैं, तो वो इन विमानों को गति प्रदान करते हैं और ये विमान मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। ग्यारह सौ इक्कीस योजन दूर मेरु पर्वत से, 1121 परिक्रमा लगाते हैं। तत्कृतः काल विभाग, फिर ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं उनसे ये काल का विभाग रचा जाता है। सूर्य परिक्रमा लगा रहा है तो यहां से वहां तक चला जाए तो फिर एक दिन कहलाता है, तो ये काल का विभाग ऐसे चलता है, ये व्यावहारिक काल है। निश्चय काल तो वो काल द्रव्य है, कालाणु है, उसका कथन आगे होने वाला है। बहिरवस्थिता, मनुष्य लोक के बाहर की क्या कथा है, तो बोले अवस्थिता, सब अवस्थित है, बिल्कुल अवस्थित ही रहते हैं बाहर के, इसके लिए ही अलग से सूत्र था। इसके उपरांत वैमानिक देवों का विवरण आगामी सूत्र से होगा। जैनम जयतु शासनम।